सफर परवानगी से पहले खयानत का मजमून चल रहा था कि किस तरह खयानत ने भी मुख्तलिफ बुतों की सूरत में इंसान के दिल में अपने अड्डे जमाए होते हैं और जब तक ये बुत न टूटे उनकी जगह खुदा नहीं आ सकता। इस सिलसिले में अभी गुफ्तगू जारी थी कि वक्त खत्म हो गया और मैंने ये जिक्र किया था कि इंशाल्लाह आइंदा खुतबे से इसी मजमून को शुरू किया जाएगा। ये आयात जिनकी मैंने तिलावत की है इनमें खयानत ही के मजमून पर मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी डाली गई है, लेकिन इससे पहले खुदा ताला फरमाता है खयानत के जिक्र से पहले कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनजिर हूँ योम लाजिफते इजिल कुलूब लदल हनाज रिकाजमीन, उस दिन से इनको डरा जो करीब तर आता चला जा रहा है, वो दिन जब खौफ से दिल हंसलियों तक जा पहुंचेंगे। वमाल वालमीन अमिन हमीम वला शफी युता, उस दिन जालिमों के लिए जालिमों के कोई उनका गहरा जिगरी दोस्त काम नहीं आ सकेगा। वला शफी युता, ना कोई ऐसा शफी उनको मुयस्सर होगा कि खुदा ताला जिसकी शफात को मान ले या जिसकी अतात की जाए। यालमु खायनत अलायुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और उन बातों से बाखबर है जिनको दिल छुपाए रखते हैं। वल्लाहु यक़्ज़ी बिल हक़, अल्लाह ताला हक के साथ फैसला फरमाता है। और वो लोग जो जिनको वो खुदा के सिवा पुकारते हैं, ला यक़्ज़ून बिशैन, उनके पास तो फैसले की कोई भी ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। यहां पहले तो मुतनब्बे फरमाया गया कि तुम्हारी खयानतें ऐसी नहीं होंगी कि उनको नजरअंदाज कर दिया जाए और तुम उन्हें छुपा सको। एक दिन ऐसा आना है जब इन खयानतों का तुम्हें हिसाब देना होगा, और वो दिन इतना सख्त है कि मुहावरे के मुताबिक जैसे खौफ से दिल इस बार दफा इस तरह धड़कते हैं, यूं लगता है कि गर्दन से टकरा रहे हैं या हंसली की हड्डियों से टकरा रहे हैं। तो ऐसी कैफियत उस दिन की होगी कि जब खौफ और इस्तराब से दिल आपे से बाहर हो रहे होंगे, और वो दिन ऐसा होगा जब दोस्तियां काम नहीं आएंगी, जब कोई शफातें काम नहीं आएंगी। अल्लाह ही फैसला फरमाएगा और अल्लाह हक के साथ फैसला फरमाएगा। यालम खयानत अलायुन, वो आंख की खयानत को जानता है। ये बहुत ही अहम मजमून है जिस पर अगर हम नजर रखें तो हमारी आंखें बहुत सी बदियों से बच जाएं और हमारे दिल बहुत सी चीजों को छुपाने के झंझट से निजात पा जाएं, और मुआशरे की सफाई और मुआशरे को जराइम से पाक रखने के लिए इस आयत का मजमून एक बुनियादी किरदार अदा कर सकता है। आमतौर पर बदी नजर से पैदा होती है, चुनांचे कुरान करीम ने एक दूसरे मौके पर फरमाया, वला तमुद्दन आयनै का इलावा मताना भी अजवाज में नहीं, तुम अपनी नजर को यूं ही आजाद आवाराना दौड़ाया करो। जिसके पास अच्छी चीज देखी जो हमने उसे अता की है, उसे लेने का फैसला कर लो, उसकी लेने की हिर्स तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। बस ललचाई हुई आंख से दूसरी चीजों को देखना ये गहरी और संगीन बदियों की बुनियाद डालने वाली बात है, और ये बुनियाद दिल में पड़ती है। बस इंसान जब किसी की अच्छी चीज को देखता है, खा उसके रिश्ता उसका इंसानी चीज हो यानी रिश्ते में उसके कोई ताल्लुक वाली हो, या किसी की मलकियत को देखता है, तो आंख की हिर्स दरअसल दिल को यह पैगाम देती है कि इसे अपनाने का फैसला कर लो। और जब यह फैसला हो जाता है तो फिर सारी स्कीमें अंदर अंदर तैयार होती हैं, और दिल आमाजगा बन जाता है उस खयानत की जिसका आगाज आंख से हुआ था। तो खयानत अल आयुन फरमाया कि आंखों की खयानत, इसकी हिफाजत करो। ये ऐसा ही मजमून है जैसे दूसरी जगह फरमाया कि सरहदों पर घोड़े बांधो, इस बात का इंतजार न करो कि दुश्मन तुम्हारे घर तक पहुंच जाए फिर दिफा की कार्रवाई शुरू करो। तो आंख वो सरहद है जहां खयानत का दिफा होना चाहिए। अगर आंख से खयानत का दिफा हो जाए तो फिर दिल का मजमून साफ और दिल का हाल साफ रहता है, दिल पाकीदा रहता है, और उसको फिर किसी किस्म का और खतरा दरपेश नहीं होता। तो कितनी लताफत के साथ खुदा ताला ने इस मजमून को बयान फरमाया कि आंखों की हिफाजत करो। आंखों से खयानत शुरू होती है, वो दिल में उतरती है, वहां पनाह ले लेती है, और इंसान समझता है कि मेरे दिल का हाल तो किसी पर रोशन नहीं है, कैसे कोई समझेगा कि मैंने क्या सोचा और क्या नीयत बांधी। फरमाया अल्लाह जानता है, वो खयानत के आगाज से लेकर उसके अंजाम तक तमाम मराहिल से वाकिफ है, और पूरी तरह उन तमाम मनाजिल से वाकिफ है जिनसे नीयतें गुजरकर बदी का रूप ढालती हैं और फिर दुनिया में मुसीबतें और दुख फैला देती हैं। चुनांचे यालम खयानत अल आयुन व मा तुख्फी सुदूर में ये तमाम बदनीयती के सफर जो एक गंदी स्कीम पर मुंतज हुआ, एक बद इरादे पर मुंतज हुआ जिसके जरिए चोरियां हुई, डाके हुए, कत्ल हुए, लोगों की इज्जतों पर हमले हुए, ये सारा मजमून कुरान करीम की इस छोटी सी आयत ने दर्जा ब दर्जा तमाम तफसील से बयान फरमा दिया है। वल्लाहु यक्दी बिल हक, کہ جس کی نظر ہر چیز پر ہو, باریک سے باریک چیز پر ہو, اس کا فیصلہ تو لازماً حق کے ساتھ ہوگا. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَخْلُونَ بِشَيْءٍ, وہ لوگ جن کو یہ خدا کے سوا معبود بناتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو کوئی فیصلے نہیں ہیں. چنانچہ شرک کا مضمون بھی اس کے ساتھ باندھ دیا. دراصل خائن لوگ اپنی خیانت کو اول تو چھپاتے ہیں, جب پکڑی جاتی ہے تو پھر دنیاوی خداؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان سے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور ان کے فیصلے اپنے حق میں کروانے کے لیے پھر خیانت سے کام لیتے ہیں. اسی لیے خدا تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ وہ دن جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہاں کسی جھوٹے کی شفاعت منظور نہیں ہوگی, کسی جھوٹے کی خاطر شفاعت منظور نہیں ہوگی, کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. لیکن دنیا میں جب تم خیانتیں کرتے ہو تو ایک سہارا تمہارا یہ جھوٹے معبود ہیں جو تم نے اپنے دلوں میں نصب کر رکھے ہیں. خیانت خود جھوٹ, خیانت خود ایک جھوٹا خدا ہے, لیکن جب خیانت مصیبت ڈالتی ہے تو پھر مزید جھوٹے خداؤں کی طرف انسان رخ کرتا ہے, ان کی طرف دوڑتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں اس دن کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور دنیا میں ان کے فیصلے تمہارے کسی کام آ نہیں سکتے کیونکہ تم خدا کی پکڑ کے نیچے ہو. بس اس پہلو سے خیانت کا مضمون بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اس کی بہت سی شاخیں ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدر کے لفظ کے تابع خیانت کو بیان فرمایا, کیونکہ لغت والے بتاتے ہیں کہ غدر اور خیانت دھوکہ اور خیانت ملتے جلتے مضامین ہیں. چنانچہ عہد شکنی کو قرآن کریم نے خیانت قرار دیا اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ غدر کے تابع عہد شکنی کا ذکر فرمایا. فرمایا ثلاثت و انا خصمهم یوم القیامت رجل آتا بی ثم غدر و رجل باع حر فاکل ثمنه و رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم یوتہ اجرہ. بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے ساتھ عہد کر کے دھوکہ دیا, یعنی میرے عہد بیعت میں داخل ہوا اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بھی ایک خیانت کی قسم بلکہ سب سے زیادہ سنگین قسم ہے. دوسرے وہ شخص جس نے آزاد شخص کو غلام بنایا اور بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا, یہ بھی براہ راست خدا تعالیٰ کی خیانت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی بخشی ہے انسان کو اس کا آزادی کا حق چھیننے کیا کسی اور دوسرے کو حق نہیں. بس غلامی کے مضمون پر یہ آیت حرف یہ حدیث حرف آخر ہے. اس میں غلامی کے متعلق تمام ضروری ہدایات عطا فرما دی گئیں جنہیں آج بدقسمتی سے عالم اسلام نظر انداز کر رہا ہے. وہ مقدس سرزمین جہاں یہ ہدایت جاری فرمائی گئی, یعنی مکہ اور مدینہ و ارض حجاز, جہاں یہ دونوں مقدس بستیاں واقع ہیں, وہاں آج تک بھی لونڈیوں کا رواج ہے اور غلام پالے جا رہے ہیں, اور مشرق وسطی میں غلاموں کی تجارت ہو رہی ہے. غریب ملکوں سے عورتیں بھی خریدی جاتی ہیں, معصوم بچے بھی خریدے جاتے ہیں, اور ہر طرح کے مظالم اس فرضی حق پر کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے اور اس کو خرید لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے, یعنی خدا فرماتا ہے کہ انسان کی آزادی خدا کی عطا ہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے غلام بنا کر دوسروں کے پاس بیچے. یہ سودا فاسد ہے, جس نے اس کے پیسے کھائے اس نے بھی خیانت کی, اور جس نے وہ خرید کر اپنی طرف سے غلام سمجھا اس نے بھی خیانت کی. کیونکہ چوری کا مال آگے چاہے ہزار دفعہ بکے वो चोरी का माली रहेगा, और जिसके हासिल दस्तयाब होगा वो भी चोर समझा जाता है। बस इस पहलू से बहुत ही अहम मजमून है कि तमाम दुनिया में किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को गुलाम बनाने का हक नहीं है। कि खुदा की तरफ से आजादी एक अमानत है और इस अमानत में खयानत करने का किसी को इख्तियार नहीं। फिर फरमाया दूसरे बदयानती ये करे कि यानी तीसरी किस्म की बदयानती है कि किसी मजदूर को उजरत पर रखे और फिर उसका पूरा हक अदा न करे। यहां ये नहीं फरमाया कि जितनी उजरत तय हो वो न दे। फरमाया इस्ताजर अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम युतही अजरहु, उससे तो पूरा पूरा फायदा उठा लिया और उसका जो हक है वो अदा नहीं किया। इस धोखे में लोग मुबतला न रहे कि जितनी उजरत तय कर ली जाए वो हक अदा हो, अगर वो दे दी जाए तो हक अदा हो जाता है। अमरे वाकया ये है कि जब फाके पड़ते हैं, गरीब मुल्कों में मुसीबतें आयद होती हैं, तो वहां हक से उजरत कम हो जाया करती है और इसको एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है, यानी इस्तेसाल हो रहा है किसी का। तो अगर आप किसी मजदूर को इतने पैसे दें कि जितना उसने आपका काम किया है उसका मुनासिब बदला ना हो, तो कतन अगर इसके कि आपने उसको अपने मुआहदे के मुताबिक पैसे दिए हैं या नहीं, आपने उसका हक रख लिया है। बस हजरत अब्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम योते ही अजरहू, इन मानों में कि लिया तो उससे पूरा काम लेकिन जो उसको दिया वो उसका हक नहीं बनता था। और ये फैसला इंसानी फितरत करती है और कर सकती है। हर शरीफ़ नफ्स इंसान जब किसी से काम लेता है तो उसकी फितरत के अंदर खुदा ताला ने एक पैमाना रख दिया है जो इन बातों को जांच लेता है कि जिस किस्म की मेहनत कोई शख्स कर रहा है मैं उसका हक अदा कर भी रहा हूं कि नहीं। पाकिस्तान में मुझे याद है सख्त गर्मियों में जब मजदूर इमारतें बनाते देखे जाते थे तो इंतहाई तकलीफ में वक्त गुजार कर कड़कती धूप में वो काम किया करते थे। अगर रात शाम को उनको 2.5 रुपए दे दिए जाएं जो उस जमाने में मजदूरी होती थी और इंसान समझे कि हक अदा हो गया तो बिल्कुल झूठ है, एक नफ्स का धोखा है उनके लिए। उस बुनियादी अहद से बढ़कर खिदमत करना जरूरी है। ऐसे मौकों पर उनके लिए शरबत का इंतजाम करना, खाने की कोशिश, खाना पेश करना और सहूलतें मुहैया करना और उजरत से बढ़कर जो तयशुदा उजरत है उससे बढ़कर अदा करना, यह है जो अमानत का हक अदा करने वाली बात है। इससे वरे वरे जितनी चीजें हैं उसमें कुछ न कुछ खयानत शामिल हो जाती है। और खुसूसन इस मामले में एहतियात की इसलिए जरूरत है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐसे शख्स से मैं झगड़ूंगा, मैं उस गरीब का वकील बनूंगा जिससे मेहनत की करवाई गई, जिससे पूरा काम लिया गया और उसका हक अदा नहीं किया गया। तो जमात अहमदिया को इस हदीस को हमेशा हिर्ज़े जान बना के रखना चाहिए। इसमें बहुत गहराई और तफसील के साथ कई बुनियादी बातों का जिक्र है और दरअसल उसी आयत करीमा की ये तफसीर है यालमु खायनत अल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, कि लोग कई किस्म की खयानतें करते हैं, उनकी आंखें चीजें देखती हैं और खयानत कर जाती हैं। अब इस मजमून का यानी मजदूरी के मजमून का भी आंखों से एक ताल्लुक है। अब मालिक देख रहा है कि किस किस्म का काम कर रहा है, वो जानता है कि उसे अगर इससे 10 गुना भी ज्यादा पैसे दिए जाएं तो इस काम पर आमादा नहीं होगा और उसकी आंख जरूर दिल को एक पैगाम पहुंचाती है। लेकिन अगर वो दिल पैगाम कबूल ना करे तब भी खयानत, लेकिन खाइन की आंख झूठी हो चुकी होती है, ये मजमून है। आम सही फितरत वाले की आंख जो पैगाम पहुंचाती है ये उस पैगाम को कबूल ही नहीं करती और रखने ढूंढती फिरती है, ये खयानत की आंख है। चुनाचे मैंने देखा है वाकियातन ऐसी सूरत में कि سخت گرمی میں بڑی مصیبت میں خون پسینہ ایک کر کے مزدور محنت کرتا ہے, ایک اینٹ ٹیڑھی کہیں رکھی جائے یا کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے, اس پر مالک یا دوسرے جو اس کو نوکر رکھتے ہیں ایسے ظالمانہ طور پر برستے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہوں اور پوری طرح ہر چیز پر قادر قدرت رکھتے ہوں لیکن خدا کی صفات حسنہ سے آ رہی ہوں. جھوٹے خدا کی یہی تعریف ہے, اپنے آپ کو مقتدر تو سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے, مگر خدا کی تمام صفات حسنہ سے آ رہی ہیں, اس طرح اس سے وہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں. اسی کا دوسرا نام فرعونیت ہے. تو دیکھیں آنکھ نے ایک اور خیانت کی, اچھی چیز کو نہیں دیکھا اور بری چیز پر نظر ڈالی اور وہی نظر کو محدود کر لیا. بس آنکھ کی خیانت کا بہت وسیع انسانی برائیوں سے تعلق ہے. اس مضمون پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو خدا تعالیٰ کی آپ کو امانت کا عرفان ہوگا اور خیانت کے مضمون سے آپ خبردار ہوتے چلے جائیں گے. آگے اسی مضمون کی بہت سی مثالیں ہیں جو مثلا قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہیں, میں اب ان مثالوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک بڑی اہم مثال ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خدا تعالیٰ مثال کے طور پر, یعنی ایک عبرت ناک مثال کے طور پر تمہارے سامنے, یعنی کافروں کے سامنے, وہ لوگ جو کافر ہو ان کے سامنے دو عورتوں کو پیش کرتا ہے, ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ ایک دوسرے موقع پر مومنوں کے لیے بھی دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی, ایک حضرت مریم کی اور ایک آسیہ فرعون کے گھر کی عورت کا ذکر فرمایا, اور یہاں کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال پیش فرمائی, اور وہ دو عورتیں ہیں حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. فرمایا کانا تا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے ایسے بندوں کے گھروں میں تھیں, ان کے عقد میں آئی تھیں جو صالح تھے, پاک باز تھے اور نیک تھے اور امانتوں کا حق ادا کرنے والے تھے. فخانتاہما, انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے حقوق میں خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیا, پھر اللہ کے مقابل پر کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور قیامت کے دن ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھ لیجئے اس آیت کا مضمون کا کتنا گہرا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس سے میں نے خطبے کا آغاز کیا. وہاں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خائن کو قیامت کے دن کوئی پناہ نہیں ہوگی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ انبیاء سے خدا کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, وہ تو جھوٹے شفیع نہیں ہیں, خیانت کرنے والوں کے حق میں ان کی شفاعت مان لی جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایسے امین ہوتے ہیں خدا کے نبی کہ خائن کی شفاعت کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے عملاً بات وہی رہتی ہے کہ ان کو کوئی شفیع نصیب نہیں ہو سکتا جس کی بات خدا مانے. بس اگر انبیاء کی بیویوں کو متعلق خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہو جائے اور یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ وہ بھی اگر خیانت کریں گی تو اس خیانت کی جزا ان کو ضرور ملے گی اور قیامت کے دن نبی کے ساتھ رشتہ ان کے کام نہیں آئے گا, تو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے اور تمام دنیا کے مردوں کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. مسلمانوں کو اور
not have such a patient believers. Therefore, I give this example for the unbelievers, that the faith and such treachery cannot come together. Secondly, if
काफिरों पर भी इसका असर है। अब देखें कुरान करीम की आयात का अहादीस से कितना गहरा ताल्लुक है। एक दूसरे मौके पर हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये गुनाह करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। इसकी सनद इसी आयत करीमा में है। ये खयानत ऐसी खयानत है जिसके मुतल्लिक फरमाया गया कि ये मोमिनों पर साजिश है, ये काफिरों पर ये मिसाल साजिश आएगी। मोमिनों के लिए जो मिसाल चुनी इसके बिल्कुल बरक्स, एक ऐसी औरत की चुनी जो पाकबाजी में एक तमसील बन गई, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम को पाकबाजी का एक सबसे आला और अरफा नमूना औरतों में बनाकर पेश फरमाया और मोमिनों को कहा कि तुम्हारे लिए यह है तमसील है, यह नमूना है, इसको इख्तियार करो। इस मजमून में और भी बहुत सी बातें हैं, आसिया को क्यों चुना गया, उसकी क्या वजूहात हैं, ये साहिब इरफान के लिए गौर की बहुत सी बातें हैं और बहुत अल्लाह ताला के फजल के साथ इसमें अजीम शान पैगामात हैं। मुझे याद है एक दफा एक पाकिस्तान का मुल्ला सवाल और जवाब की मजलिस में आया, उसने बड़े तंज के साथ ये सवाल उठाया कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कि मिर्जा साहब ने तो लिखा है कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी मरियमी हालत हो गई और उस मरियमी हालत में बहुत तकलीफ में से मैं गुजरा और फिर मेरे रूहानी बच्चा हुआ और वो मसीह है जो मैं हूं। तो बहुत उसने नमक मिर्च लगाया और बड़े नखरों के साथ ये एतराज उठाया। बड़ी भारी मजलिस थी, सैकड़ों आदमी उसमें शामिल थे और उसने मजलिस के मिजाज को बिगाड़ने के लिए बहुत ही तंज के साथ काम लिया। तो बताइए वो कैसे क्या क्या गुजरी उनके ऊपर मिर्जा साहेब, कि किस तरह बच्चा हुआ वो और किस तरह हमल ठहरा, किसका हमल था वगैरह वगैरह। मैंने उससे कहा कि मौली साहब आपने बात खत्म कर ली तो अब मुझसे मेरी बात सुन लीजिए। कुरान करीम ने यह फरमाया है कि मोमिनों के लिए दो औरतों की मिसालें हैं, एक मरियम की और एक इमरात नूह की। तो आपने अपने लिए आला मिसाल तो नहीं चुनी, उस पर तो आपने मजाक शुरू कर दिए हैं। मरियम की मिसाल तो आपने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए रहने दी है। तो अगर आप मोमिन हैं तो आपके लिए मफर नहीं है इस बात से कि आला मिसाल नहीं चुनते तो कम से कम अदना मिसाल ही अपने ऊपर साजिश करके दिखाएं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मरियमी हालत में से गुजर कर उस रूहानी पाकबाजी का नमूना दिखा दिया जिसमें शैतान के मस के बगैर रूहानी औलाद नसीब होती और कोई जाती तमन्ना, कोई जाती ख्वाहिश, कोई गंदा जज्बा जो शैतान से निकलता है उस रूहानी वलादत में कार फरमा नहीं होता। वरना हजारहा लोग ऐसे हैं जिनको तमन्ना होती है कि रूहानी तरक्की करें, नफ्स उनको धोखे देता, कई किस्म के तवामात इल्हाम बन जाते, कई किस्म के पैगामात के गलत मतलब निकालते और अपने मरातब बढ़ाते रहते हैं। मगर खुदा ताला फरमाता है कि मोमिन की मिसाल मरियम सी है। मरियम ने किसी नापाकी के ख्याल को दिल में नहीं आने दिया और उसके बावजूद खुदा ताला ने उसको एक रूहानी बच्चा अता फरमाया। तो मोमिन की हर तरक्की दिल की पाकिजगी से वाबस्ता होती है, उसमें गैरुल्लाह का और शैतान का कोई दखल नहीं होता। मैंने कहा इन मानों में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आप को वो कामिल मोमिन साबित कर दिखाया जिसकी आला मिसाल मरियम की सी है। आप इसको कबूल नहीं करते। अब मैं आपके अल्फाज में पूछता हूं कि आप अगर फिरौन की बीवी बनते हैं तो फिरौन ने आपसे क्या किया और कैसे कैसी गुजरी आप पर वारदात। जिस तरह आप नखरों से मसीह मौत पर इतराज करते और मुझसे पूछ रहे थे, अब इसी मजलिस में आप अपनी दास्तानें सुनाइए। अचानक मजलिस का मिजाज उलट गया उसके ऊपर। वो लोग जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर हंसने की तैयारी कर रहे थे, वो मौलवी साहब की तरफ देखते थे और हंसते थे और कहते थे कि भाग जाओ यहां से। अमरे वाकया यह है कि कुरान करीम को गहराई की नजर से देखा जाए तो उसमें बहुत गहरे मतालिब हैं, और तमाम अहादीस नबविया और तमाम पाकबाजों के फरमूदात कुरान करीम में जड़े रखते हैं। इसलिए बदबख्त और बदनसीब है जो पाक लोगों के कलाम पर हंसी और ठट्ठे में जल्दी करता है। बाज़ दफा वो कलाम समझ नहीं आता और अजीब महसूस होता है, लेकिन अगर इंसान को ये बुनियादी हकीकत मालूम हो कि खुदा के बंदों की बातें खुदा के कलाम में अपनी जड़ें रखती हैं, वहीं से फूटती हैं, तो इंसान तलाश करे तो उस जगह तक पहुंच जाता है। बस इन्हीं मानों में जब आप देखें तो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम फरमूदात कुरान करीम की किसी न किसी आयत में पैवस्त हैं, और किसी एक खास गुनाह के मुतल्लिक आपका यह फरमाना कि वो गुनाह करते वक्त इंसान मोमिन नहीं रहता, या उस किस्म की दूसरी खयानतों के मुतल्लिक ये फरमाना कुरान करीम में जो मसलन ये आयत है इससे इस्तंबात होता है, और भी आयत से इस्तंबात होता होगा। बस बुनियादी बात यह है कि खयानत करने वाला हकीकत में मोमिन नहीं रहता, जब वो खयानत करता है वो ईमान के दायरे से बाहर निकल जाता है। ये जो इस दुनिया में आजकल मुआशरा है, ये ऐसा खतरनाक होता चला जा रहा है कि इस आयत के मजमून को ज्यादा से ज्यादा समझने और दूसरों में इसकी तशहीर की जरूरत है। इसके मुकाबले पर खुदा तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल रखी और उसका भी खयानत की इस्तलाह में जिक्र फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बिलाखिर कैद से रिहाई नसीब हुई तो आपने फरमाया कि मैं इस जेल खाने से बाहर नहीं आऊंगा जब तक उस औरत से पहले पूछा ना जाए जिसने मुझ पर इल्जाम रखा था कि मैं कैसा था। जब उस तक ये पैगाम पहुंचाया गया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया और कहा कि वो पाक बंदा था खुदा का। उस पर हजरत यूसुफ ने फरमाया ज़ालिका लियालम अन्नी लम अकुनु बिलग़ैब, ये मैंने इसलिए किया था, यानी मजीद अपनी कैद को लंबा कर लिया मगर बाहर आना पसंद नहीं किया, इस वजह से ताकि मेरा मालिक साबिक मालिक खूब जान ले कि मैंने उसके गैर हाजिरी में उससे कोई खयानत नहीं की। कितना अजीम शान मजमून है। और जैसा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्जी मालिक की खयानत का जिक्र फरमाया जो मजदूर से खयानत करता है, यहां दरअसल इसका उलट मजमून है। एक मजदूर पर इल्जाम लगाया गया कि उसने खयानत की, लेकिन मजदूर होने के बावजूद बेताकत और मजबूर होने के बावजूद जबकि खयानत करने के ज्यादा नफ्सियाती मवाजे मौजूद मुहर्रिकात मौजूद होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस हालत में भी खयानत नहीं की। फरमाया ज़ालिका लियालम अन्नी लम अकुनु बिलग़ैब वन अल्लाह ला यहदी कैदुल खायरीन, दो बातें साबित करने के लिए मैंने ये मौकफ इख्तियार किया था। अव्वल ये कि मैं खायनों में से नहीं हूं, और जिसने मुझे खरीदा था उस जमाने में वाकईतन एक अजीब की हैसियत से गुलामी के मंदिरों में जकड़े हुए एक मालिक के घर काम कर रहे थे। फरमाया उसको इल्म हो जाए कि मैंने कभी खयानत नहीं की। वह अन अल्लाह ला यहदी कैदुल खायरीन, और ताकि यह भी पता चल जाए कि वो लोग जो कि खयानत किया करते हैं खुदा ताला कामयाब नहीं हो, बस कैद खाने से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह तक जा पहुंचे और उस वक्त के बादशाह यानी अजीज मिस्र के ताबे उसके इख्तदार में शामिल हो गए। बहुत बड़ा मर्तबा आपको अता हुआ, सारे खजाइन आपके सुपुर्द कर दिए गए और वजीर दफा की भी बड़ी ताकत होती है मगर आखिरी तान जो टूटती है वो इक्तसादियात पर ही टूटा करती है। जिसके हाथ में मुल्क की इक्तसादियात हों दरअसल वही बादशाह है। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमलन कैद खाने से मिस्र की बादशाही नसीब हो गई और ये माने हैं कि देखो अल्लाह ताला ख्यानत करने वालों की तदबीरों को कामयाब नहीं होने देता, उलट नतीजा निकालता है। ख्यानत उसने की थी जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया और उसका नतीजा क्या निकला, देखो आज मैं किस हाल किस शान तक पहुंच गया हूं। बस ख्यानत से बचना बहुत ही जरूरी है और इसके नतीजे में अल्लाह ताला बाज़ हिफाजतों के वादे फरमाता है। अगर ख्यानत से बचने वाला खुदा की खातिर ख्यानत से बचे तो अल्लाह ताला की हिफाजत और ताईद के उसके साथ वादे हैं। मसलन हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुतल्लिक फरमाया, वइन युरीदु खियानतका फ़क़द खानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकन मिन्हु वल्लाहु अलीमुल हकीम। देखो अगर तुझसे ये बातें करते हैं, झूठी झूठे वादे करते हैं, झूठी तसल्लियां देते हैं कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है और दिल में बाद इरादे रखते हैं, ऐसी सूरत में हम तो ये मुतरे करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा खुदा से भी तो बदयानती की है, खुदा से भी ये खयानत का मामला करते हैं और खुदा अपनी खयानत अपने से खयानत और तेरे से खयानत में फर्क नहीं करेगा। तू खुदा का बंदा है, खुदा की खातिर तूने अपना एक अखलाकी जाबता कबूल फरमाया है, अपने लिए एक अखलाकी जाबता मुकर्र किया है, उन हदूद में रहते हुए हम तुझे किसी खाइन की चलाकी का शिकार नहीं होने देंगे। फरमाया फ़क़द खानुल्लाह मिन क़ब्ल, अल्लाह से भी तो खयानत करते थे, कब खुदा ने इनकी खयानत चलने दी है। फ़अमकन मिन्हु, अल्लाह ताला ने हमेशा इनको आजिज़ कर दिया है। पर तुझसे भी यही वादा है कि खुदा ताला तेरे सामने इनको आजिज़ कर देगा और इनकी कोई पेश नहीं जाएगी तेरे खिलाफ। वल्लाहु अलीमुन हकीम, तुझे इनकी खयानतों का इल्म हो या ना हो, अल्लाह ताला बहुत ही इल्म रखने वाला और बहुत ही हिकमतों वाला है। ये वादा सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनों से ये वादा फरमाया, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़वानिन कफूर। तो याद रखो अल्लाह ताला अपने उन सब मोमिन बंदों की हिफाजत फरमाएगा और उनको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा जो अमानत का हक अदा करते हैं। ये मजमून अमानत का हक अदा करते हैं इस आयत के आखिरी हिस्से में मुजमिर है जहां फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खवानिन कफूर, अल्लाह ताला खयानत करने वालों और नाशुकरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो अगर मोमिनों से ताल्लुक रखता है तो इस आखिरी बात का बरक्स मोमिनों में पाया जाना जरूरी है। इस तरह खुदा ने इन दोनों बातों को जोड़ दिया। शुरू में फरमाया कि मैं वादा करता हूं कि मोमिनों का हर किस्म का दिफा करूंगा, उनको कोई खतरा नहीं, और आखिर में फरमाया कि याद रखो खुदा ताला खयानत करने वालों और नाशुकरों से ताल्लुक नहीं रखा करता। तो उन मोमिनों की वो बुनियादी सिफात बयान फरमा दी जिनकी वजह से खुदा उनसे इतना ताल्लुक रखता है। किसी के दिफा की हिफाजत लेना उसकी मोहब्बत की दलील है। तो ला युहिब्बो के ताबे मोमिन नहीं आते क्योंकि वो नाखायन हैं और ना नाशुक्रे हैं। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो खयानत करते हैं मोमिनों के दायरे के अंदर रहते हुए अदना खयानतें करते हैं, हमें यूं सोचना चाहिए। कबायर खयानतें करें तो मोमिन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी खयानतें होती रहें जैसा कि मोमिनों से भी हो जाती हैं, तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि छोटी खयानतें और छोटी नाशुक्रियां उनको खुदा ताला के इस वादे के फैज से महरूम कर देंगी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम मोमिनों के दिफा का वादा करते हैं और वो मोमिन यानी वो मोमिन जो ना खाइन है ना नाशुक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला खाइनों और नाशुक्रों से मोहब्बत नहीं करता। इस ज़मन में मैं एक खसूसी पैगाम अहले पाकिस्तान को देना चाहता हूं, क्योंकि वो बदियां जो मगरिब से पैदा होती हैं आजकल बड़ी तेजी से मशरिकी ममालिक में जाकर घर बना लेती हैं, उनमें एक बदी जिनसी बेराहरवी है जो और फहाशी, ये इस कसरत से मगरिब से मशरिक में जाकर जागजी हुई है। यूं मालूम होता है जैसे वही उनका वतन था, और पाकिस्तान जिसको इस्लामी ममलिकत के नाम पर बड़े बुलंग बांग दावी के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, वहां इस कसरत से ये रुझान पैदा हो रहे हैं कि जो इतलाएं मिलती हैं उससे अकल भिन्ना जाती है कि क्या हो रहा है और क्यों किसी मुल्ला या हुकूमत को ये फिक्र नहीं कि अपने मुआशरे को इस किस्म की फहाशी से बचाएं। जो इतलात मुझे मिलती हैं मुख्तलिफ शहरों से उनसे पता चलता है मसलन के गंदी फिल्मों का कारोबार, बेहयाई की तस्वीरों का कारोबार वहां इतना ज्यादा है कि यूरोप के सबसे ज्यादा बेहया शहरों में भी इतना नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन बेहया शहरों में जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है वो बड़ी नेक नीयती के साथ इन बातों की निगरानी करती है और पुलिस बड़ी दयानतदारी के साथ इन लोगों के पीछे पड़ी रहती है। इसलिए कारोबार तो यहां भी चलता है लेकिन इस कारोबार को कोई तहफ्फुज़ात हासिल नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे बदनसीब मुल्क में जहां पुलिस बददियानत हो, जहां के वज़रा ये ऐलान करें खुद आम बरसरेआम कि हमारी पुलिस कुल्लियतन बददियानत और बेएतमाद हो चुकी है, वहां जहां हुकूमत को हकीकत में इस बात की कोई परवाह न रहे कि अवाम के कैसे अखलाक हैं और क्या क्या चीजें इन अखलाक को तबाह कर रही हैं, जहां मुल्ला को कोई शऊर ही ना हो कि इस आला इस्लामी कदरें हैं क्या और उन पर इस मुल्क में क्या बन रही है, वहां ये चीजें खुले बंदों आम फरोख्त होती और इस कसरत से नशो नुमा पाती हैं कि जैसे कोई बीमारी किसी जिस्म के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर ले और दिफा की सारी सलाहियतें खाबीदा हो जाएं, सो जाएं, उनमें एहसास ही बाकी ना रहे कि हम पर क्या हो रहा है। इस सिलसिले में मैं खासतौर पर अहमदी नौजवानों को और निज़ाम जमात को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि इस बात की निगरानी रखें, जब एक बदी आम फैल जाती है तो उसके असरात जरूर हर जगह पहुंचते हैं। ये हो नहीं सकता कि अहमदी मुआशरा इन चीजों से कुल्लियतन पाक रहे, क्योंकि समंदर में जब एक कपड़े को फेंका जाता है तो बिल आखिर उसमें पानी सरायत करता है, बाज़ चीज़ों में कम करता है और आहिस्ता करता है, बाज़ चीज़ों में ज़्यादा तेज़ी से करता है और मुकम्मल सरायत कर जाता है। लेकिन जमात के मुआशरे को बेदार मगजी के साथ और मुसलसल मेहनत और तवज्जो के साथ अपनी हिफाजत करनी होगी, वरना ये चीज़ें उनमें राह पा जाएंगी और हो सकता है किसी हद तक पा गई हों और ऐसी सूरत में फिर इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे निकलेंगे। वो जो दो मिसालें मैंने बयान की हैं वो कि इमराता नू और इमराता लूत, वो मिसालें फिर सादिक आने लगती हैं माशरे पर और फिर कोई उनको रोक नहीं सकता। मैंने इस सूरत हाल का जहां तक तजिया किया है इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जो जिन लोगों को मैं नसीहत करता हूं वो मजमून समझें कि क्यों ये उनके लिए मुजिर है। واقعہ یہ ہے کہ بے حیائی وقتی طور پر انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے، ایک جذبات میں تموج پیدا کرتی ہے. بے حیائی کے نظارے جب یہ تموج پیدا کرتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت لطف آیا اور بہت زیادہ بہتر رنگ میں ہم اپنے تعلقات سے لطف حاصل کر سکیں گے، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر گناہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا ہمیشہ الٹ نتیجہ نکلا کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا ابتدائی سالوں میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، ایک سینئر طالب علم کے ساتھ میری گفتگو ہوئی اور وہ بڑی شدت کے ساتھ مغربیت کا قائل اور پردے کے خلاف تھا. اس کو میں وہ تھا وہ نفسیات کا طالب علم. اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا تم نفسیات کا ایک چھوٹا سا نقطہ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا تعالیٰ انسان کے لطف کی راہ میں حائل نہیں ہے، بلکہ الہی احکامات اس کے لطف کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسے لمبی زندگی عطا کرتے ہیں. جہاں پردہ رائج ہو وہاں یہ تو نہیں کہ انسان کو کسی قسم کا رومانی لطف نہیں ملتا. ایک جھلک ہماری شاعری میں تم دیکھ لو، محبوب کی ایک جھلک اس کو ایسی کیفیات عطا کر جاتی ہے دیکھنے والے کو، جو بے حیا سوسائٹی میں ہر روز ہر وقت دیکھنے سے نصیب نہیں ہو سکتی. کیونکہ انسان بڑی جلدی ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب بے پردگی کا عادی ہو جائے تو اس کا اگلا مطالبہ ضرور یہ ہوگا کہ اور زیادہ بے پردگی ہو، اور وہ لازماً بے حیائی تک پہنچے گا. کچھ دیر کے بعد وہ چیز بھی نہیں رہے گی، اس سے وہ بھی لطف دینا بند کر دے گی. پھر انسان بالآخر جانوروں تک پہنچے گا، اور جانوروں میں جو قدرتی طور پر ایک بے حیائی تو وہ ہوتی ہے جس میں جس کا تعلق حیا والوں سے، ان لوگوں سے جن میں حیا کا مادہ ہو جو فیصلہ کر سکیں. مگر جانوروں کے تعلق میں جب ہم بے حیائی کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے گناہگار ہیں، ان کے ہاں یہی صورتحال ہے. بس جانوروں میں جو تعلقات میں ایک بے جھجک اور بے تکلف رسوم پائی جاتی ہیں جو انسانوں میں آتی ہیں تو بے حیائی بن جاتی ہیں. بالآخر انسان وہاں تک ضرور پہنچ جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر کچھ ہو نہیں سکتا، پھر کسی کی میڈنس ہوگی. بڑی تفصیل سے ان سے میں نے اس بات پہ گفتگو کی. بعد میں مجھے بہت گزرت کے بعد یورپ میں آنے کا موقع ملا تو ان دنوں میں میں نے دیکھا یہاں بوہیمینزم اور ہپیزم کی تحریکات چل رہی تھیں، اور بعض عورتیں پوری طرح ننگی ہو کر، پوری طرح برہنہ ہو کر بازاروں میں نکل آتی تھیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی اب مطمئن نہیں ہیں، کچھ ہونا چاہیے. اور پھر معلوم ہوا کہ یہاں تعلقات کے ساتھ ساتھ ظلم کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور سیڈزم جو بھی کہلاتا ہے، اس سیڈسٹ پیدا ہو گئے ہیں جو مزہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ساتھ ظلم نہ کریں، ماریں کوٹیں نہ، بعض زنجیریں برسا کر عورتوں پر اس سے ایکسائٹمنٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ وہی جنون ہیں جن کی خبر قرآن کریم نے دی تھی کہ تم شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیاس بجھانے کی مقدر کر رکھی ہیں وہیں تک رہو، اس سے آگے محض دھوکہ ہے کہ تمہاری پیاس بجھے گی. وہ لذتیں جن کی تم پیروی کرنا چاہتے ہو یہ تم شراب کی طرح ان سے آگے آگے بھاگیں گی، اور پھر ایک ایسا مقام آئے گا کہ آگ تو بھڑک چکی ہوگی لیکن پیاس نہیں بجھے گی. بس وہ لوگ جو اس قسم کے گندی فلموں اور تصویروں کے ذریعے اپنے نفس کو تحریک دینا چاہتے ہیں، ان کے نفس پاک باز لوگوں کے مقابلے پر بہت جلدی مر جاتے ہیں. اس بات کا ایک قطعی ثبوت یہ ہے کہ آج امریکہ میں سب سے زیادہ نااہل مرد ہیں. ان کی جتنی نسبت امریکہ میں پائی جاتی ہے شاید ہی کسی اور ملک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ بے حیائی نے بالآخر ان کو بے حس کر دیا ہے، کوئی چیز تموج نہیں پیدا کر سکتی، یہاں تک کہ روزمرہ کے تعلقات میں کوئی لذت ہی باقی نہیں رہتی، گھر اجڑ جاتے ہیں. ایک انسان جو پاک باز ہو اپنی بیوی سے پیار کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ جانچ سکیں कि इनकी हद से ज्यादा बेहयाई में जो मजा है उससे ज्यादा मजा उस प्यार और मोहब्बत में है जो खुदा ताला के फरमान के ताबे इंसान बेतकल्लुफ और इजाजत के ताबे करता है। बस ये धोखा है जिसकी पैरवी की जा रही है और इसके नतीजे में फिर वफा उठ जाती है। जो शख्स भी ऐसी फिल्में देखता है वो ये जरूरी तो नहीं कि वो लाजमन अकेला ही देखे, बल्कि मुझे जो इत्तलाएं मिलती हैं उनसे पता चलता है कि खानदान ऐसे हैं जहां खावन घरों में लेके आते हैं, अपनी बीवियों को दिखाते हैं, बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उनकी बीवियों के साथ मिलकर ये तस्वीरें देखते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा लाजमन ये होगा कि तुम भी बेहया और बेवफा बनते चले जाओगे, तुम्हारी बीवियां भी बेहया और बेवफा बनती चली जाएंगी, इस सारे मुआशरे से वफा की कदरें उठ जाएंगी और वो लज्जतें जो खुदा ने आम ताल्लुकात में रखी हैं वो वहां नहीं रहेंगी। फिर तुम्हें बोहेमियन बनना पड़ेगा, फिर तुम्हें उन जानवरों जैसी वो हरकत करनी पड़ेंगी जिनको तुम शौक से पैसे खर्च करके देखते हो। दूसरे, बेवकूफी भी बड़ी है। उन फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा जो चीजें मिलती हैं वो वही हैं जो तुम्हारी गलियों में आम हैं। कुत्तों को देख लो, मवेशियों को देख लो, इंसान बेहयाई में उनसे बढ़ नहीं सका, कोई ऐसी चीज ईजाद नहीं कर सका जो कुदरत में तुम्हारे लिए नमूने के तौर पर मौजूद नहीं। तो हकीकत में वो जो साल हा साल पहले उस गुफ्तगू के दौरान मैंने इस मजमून को आगे बढ़ाया था कि मुस्तकबिल में ये होगा, अब मैं हैरान होता हूं कि बैन ही उसी तरह आज की दुनिया में हो चुका है, यानी मगरबी दुनिया में ये बातें अपने कमाल को पहुंच चुकी हैं। बेहयाई करते करते जानवरों की नकल उतारना, जानवरों जैसे हो जाना, उसी तरह की अपने लतीफ मिजाज को नाकिस करते करते जानवरों के हद तक पहुंचा देना, ये सब कुछ हो गया लेकिन वो लज्जत हासिल नहीं होती जिसकी पैरवी की जा रही है, वो फिर आगे भाग जाती है। यहां तक इंसान एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर पहुंचता है जिसके बाद हर किस्म की बदियां फूटती हैं, घरों में बच्चों से मजालिम और कई किस्म की बेहयाइयां, फिर ड्रग एडिक्शन, लेकिन एक्साइटमेंट आगे आगे भागती और चाहती है और चाहती है। और कुरान करीम में जैसे जहन्नम का नक्शा खींचा है कि वो आखिर ये कहती रहेगी हल में मजीद और भी कुछ है तो डाल दे खुदा, और भी कुछ है तो डाल दे। तो ये नफ्स की जहन्नम तो भरने वाली नहीं है। अपने मुआशरे को तबाह ना करो और अपने सुकून और ईमान, अपने सुकून और तमानियत को बर्बाद ना करो। तुम्हारे घर टूट जाएंगे, तुम्हारे घरों से सुकून उठ जाएगा। अमीर मुल्कों के नखरे हैं, इनकी बेहयाइयां इन तक ही देने दो। गरीबों में जब ये बेहयाइयां मुंतकिल हों तो उसके साथ और भी ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं। जराइम बहुत शिद्दत के साथ सर उठाते हैं। जराइम का इन बेहयाइयों से गहरा ताल्लुक है, यहां भी है जो वहां और वहां भी होगा, लेकिन गरीब मुल्कों में अमीर मुल्कों की अयाशियां तो किसी सूरत भी, जैसे कहते हैं, पुग नहीं सकती, ये उन पर पूरा नहीं उतर सकती, मुआफिक नहीं आएंगी, हजम नहीं होंगी। अपने मुआशरे की हिफाजत करो और जमात अहमदिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इसी तरह यूरोप की जमातों को भी मैं नसीहत करता हूं कि खयानत का जो इंसानी मुआशरे से ताल्लुक है उस मजमून को इस आयत ने मुख्तसरन बयान फरमा दिया है और इसका आखिरी अंजाम दिखा दिया है कि याद रखो, काफिरों के लिए हमने लूत की बीवी और नूह की बीवी की मिसाल रखी है। ये तफसील बयान नहीं फरमाई, इसलिए मोमिन का काम नहीं है कि तफसील में जाए। ये सोचना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं अंबिया की इज्जत और एहतराम के पेश नजर कि उनकी बीवियों ने क्या खयानत की होगी, मगर उनके साथ जो खुदा ताला ने अकूबत का सलूक फरमाया उसके पेश नजर ये सोचना हमारे लिए लाजिम है कि औरत जिस किस्म की भी खयानतें कर सकती है, जहां तक वो खयानतें कर सकती है, इस आयत का मजमून उन सब बातों पर हावी होगा। اور اگر انبیاء کی بیویوں کو کسی خیانت کے نتیجے میں ایسی سخت سزا دی جا سکتی ہے جیسا کہ بیان فرمایا گیا, تو جو بھی وہ خیانت تھی ہمیں اس سے غرض نہیں. عورتیں جو خیانت کرتی ہیں اس کے ساتھ ضرور کوئی تعلق ہے. بس عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں نصیحت ہے کہ ہر اس خیانت سے باز آ جائیں جو ان کے خامدوں کے خلاف خیانت ہے یا ان کے دوسرے تعلق والوں کے خلاف خیانت ہے, کیونکہ خدا کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا دی جاتی ہے. اور ان مردوں کو میری نصیحت ہے جو اپنی بے حیائیوں کے لیے اپنی بیویوں کو خائن بناتے ہیں کہ وہ ان گناہوں میں ساتھ ملوث ہوں گے اور ان کو اس کی ضرور شدید سزا دی جائے گی. انبیاء کی مثالیں اس لیے دی گئیں کہ ان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا اور خالصتاً قصور ان عورتوں کا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ اگر مردوں کا قصور ہو تو ان کو خدا چھوڑ دے گا. جو مرد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امن اور سکون کی قبریں کھودتے ہیں, اپنے گھروں کو بے حیائیوں کے اڈے بناتے ہیں, ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے, سبق ہے. ان کا سکون, ان کی آگے نسلوں کا سکون اٹھ جائے گا. اور پاکستان میں جو بے پردگی کی رو چل رہی ہے اس کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے. اگر بے پردگی اس بنا پر ہو کہ عورتیں کام پر جاتی ہیں اور معاشرے میں اس حد تک بے پردگی بے حیائی کا موجب نہیں, تو اس قسم کے رہن سہن کو ہم ضروری نہیں کہ بے پردگی میں داخل کریں. اسی لیے بعض ملکوں میں عورتوں کا رہن سہن اور ہے, اور میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں ان کی طرز سے سمجھتا ہوں کہ اس رہن سہن میں بے حیائی کا کوئی عنصر شامل نہیں, اور میں ان کو نہیں پکڑتا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان باتوں سے, اب یہ ٹھیک ہے, کھلی چھوٹی ہے, جو چاہے جو کرے. ہرگز نہیں. جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ خطرہ ہے وہاں میں ضرور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی فوری طور پر, کبھی ٹھہر کر, کبھی کسی دوسرے ذریعے سے, کبھی خطبات میں بیان کر کے. لیکن بے پردگی کا ایک تعلق ضرور بے حیائی سے ہے, اور جن معاشروں میں بے حیائی اصل محرک ہو اور اصل وجہ بے پردگی کی نمائش ہو, اور یہ ہو کہ عورت اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا کر غیروں کو دکھائے اور ان سے تعلقات بنائے, یا کم سے کم رمز کنائے ہوں اور بے تکلف اپنی نمائش کر سکے اور اپنی جانب ان کو کھینچ سکے, وہاں وہ عورتیں بھی ہزار بہانے پیش کر سکتی ہیں کہ ہمیں تو کالجوں میں کو جانا ہے, ہمیں تو فلاں جگہ جانا ہے, ہم نے فلاں کام کرنے ہیں, اس لیے ہم اس قسم کے پردے نہیں پہن کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی. ہم مان ہی نہیں سکتی کہ قرآن کریم عورت کو اس طرح جکڑتا ہو. اب ان کا ظاہری عذر تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا اگر وہ ظاہری عذر کچھ طاقت رکھتا ہو, مگر اللہ تعالیٰ نے اور بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے جب آنکھوں میں خیانت پیدا ہوتی ہے, اور اس خیانت سے بھی واقف ہے جو دلوں میں پناہ گزین ہے, دلوں کے ہزار پردوں میں چھپی ہوئی. تو ایسے خاندانوں سے جو عذر رکھ کر خود اپنے مستقبل کہ اس کو دباہ کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے امن اور سکون کو لوٹنے کے سامان کر رہے ہیں, ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ میں تم سے کوئی بحث کر سکتا ہوں, نہ جماعت کے وہ مخلص بندے جو تمہیں نصیحت کے رنگ میں اچھی باتیں کہتے ہیں اور تم سے بری باتیں سنتے ہیں, وہ تم سے کوئی بحث کر سکتے ہیں, لیکن خدا تم سے بحث کر سکتا ہے. اور ایک بحث کرنے والا ایسا ہے جس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں ضرور بحث کروں گا, میں ضرور حجت کروں گا تم سے, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی بحث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک تم اپنے نتائج کی بدی کو پا چکے ہوگے, تم پر روشن ہو چکی ہوگی بات کہ تم غلط تھے. بس پردے کا مضمون ہو یا کوئی اور مضمون ہو, خیانت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اگر آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اسی میں آپ کے لیے خیر, اسی میں آپ کے لیے برکت ہے. خدا کرے کہ جماعت کے خلاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی حجت نہ کریں, और जमात के अमल से पूरी तरह मुतमईन और राजी हों, क्योंकि जिसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी होंगे खुदा गवाह है कि खुदा उससे जरूर राजी होगा। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ